الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہر دن جب سورج نکلتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے جو نیک کام کرنا ہے کر لو، آج کا دن تمہاری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا. اور واقعی دن لوٹ کے نہیں آتے. انسان عقل مند تب ہے کہ جب وہ ہر دن کو قیمتی سمجھے اور یہ سوچے کہ یہ دن لوٹے گا نہیں، اگلے ہفتے یہی دن آئے گا، نام یہی ہوگا مگر وقت یہ نہیں ہوگا، وہ ایک نیا دن ہوگا، ایک نئی تاریخ ہوگی. تو جیسے تاریخیں دوبارہ نہیں آتی نا، آپ دیکھتے ہیں ایک تاریخ گزر گئی، اگلے سال بھی یہی مہینہ آئے گا، یہی تاریخ آئے گی مگر وہ سال الگ ہوگا، اگلے ہفتے بھی یہی دن آئے گا مگر وہ دن الگ ہوگا. تو ہر دن قیمتی ہے اس زندگی کا، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایک نیا دن عطا فرمایا، اور اس کو سوچ سمجھ کے بھی گزارنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس آدمی کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور بغض ہو، اس کو معاف نہیں کیا جاتا. یعنی اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ باہم صلح نہ کر لیں اس وقت تک ان کی مغفرت کے معاملے کو مؤخر کر دو، یعنی پوسٹ پون کر دو جب تک دلوں سے بغض اور دشمنی نہ نکل جائے. تو یہ بغض اور دشمنی اور معاف نہ کرنا ایک دوسرے کو، یہ اکثر دلوں کی تنگی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بخل. آپ سمجھتے ہوں گے کہ بخل صرف مال میں ہوتا ہے، نہیں، بخل حقوق دینے میں بھی ہوتا ہے، بخل باہم معاملات میں بھی ہوتا ہے، بخل معاف کرنے میں بھی ہوتا ہے. کیا چیز ہوتی ہے یہ بخل؟ جس کی بہت یعنی بہت ایک اگلے درجے کی فارم جو بن جاتی ہے وہ شح بن جاتی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، یعنی بخل کا بھی اگلا سٹیج. اور شح کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنے مفاد کے لیے تو اس قدر حریص ہو کہ ذرہ برابر بھی نہ چھوڑے، اور دوسرے کو دیتے وقت دل کو اتنا تنگ کر لے کہ کچھ بھی دینا نہ پڑے. اور واقعی ہماری چاہت کیا ہوتی جب کسی سے معاملہ ہوتا ہے؟ کہ دیتے وقت ہم کیا دیں اور لیتے وقت ہمیں کیا ملے. تو شوح کیا چیز ہوتی ہے؟ تما اور بخل، یعنی لالچ بھی ہے کہ مجھے زیادہ مل جائے اور بخل بھی ہے کہ مجھے دینا نہ پڑے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کے شح سے بچا لیا گیا تو وہی ہیں جو کامیاب ہیں. یہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں جن کے اندر یہ چیز نہیں ہے. تو یہ دل کی تنگی، یہ ہرس اتنی زیادہ، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. کہ جب دل میں وسعت نہ ہو، دل کھلا نہ ہو، دل تنگ ہوتا ہے تو تبھی انسان کہتا ہے نا میں کیوں معاف کروں، جائے اس نے مجھے یہ کہا تھا، باتیں چھوڑنی ہی نہیں پرانی، اتنے اتنے سال گزر جاتے ہیں انہی باتوں کو گلی سڑی کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قرآن پاک میں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، یعنی تم بھی لوگوں کو پھر معاف کر دیا کرو، مگر بندے کے اندر اس قدر شوح ہے کہ وہ کہتا ہے میرے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں، چاہے کبیرہ ہیں صغیرہ ہیں، ہر طرح کا میرا گناہ معاف ہو جائے. ایسا نہیں ہے کیا؟ ہم دعا کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے نا، ہماری یہ تمہ ہوتی ہے، مگر کسی نے اگر میرے ساتھ کچھ کیا تو وہ میں نے ساری زندگی نہیں معاف کرنا. اور باقاعدہ ہم زبان سے بولتے ہیں اس کو نہیں معاف کروں گی، میں نے نہیں ساری زندگی معاف کرنا. अकबर। तो इससे पता चलता है कि ये बुखल जो है ना, ये दिल की तंगी, ये हर जगह पे नजर आती है। फिर जब दिल तंग होता है तो सिर्फ पैसों में नहीं होता, फिर वो दिल घुटता है किसी को भी कोई खैर देते वक्त। आप पंखे के नीचे बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, मगर आपको ये है कि फलां भी क्यों आके बैठ गया, उसको क्यों ठंडी हवा मिले, तो ये बुखल है। आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी में, आप किसी को साथ बिठा लेंगे तो गाड़ी का पेट्रोल ज्यादा तो नहीं खर्च होता, और आप कहते हैं मैं क्यों बिठाऊं, इसके पास भी तो है ना, खुद ही अपनी इस्तेमाल करें। ये बुखल है दिल का कि दिल तंग होता है, क्यों खैर किसी और को क्यों पहुंचे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया असलु खैर, सुलह तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मसला क्या है, वह अहदेरतिल अनफुसु शुह, नफ्सों के अंदर शोह शामिल कर दी गई। हर नफ्स में ये तमा, ये कि बस मुझे मैं क्यों सुलह करूं, मुझे क्यों पहल करनी पड़े, उसने तो वैसा किया ऐसा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखल से बड़ी बीमारी और कोई हो सकती है, एक बीमारी है ये। एक और वाक्य से आपको इसका बताती हूँ कि ये कैसी चीज है। इब्ने अब्बास से बयान किया गया कि एक आदमी था अरब में, बहुत अमीर था, लेकिन बखील ऐसा था कि रात को इसलिए आग नहीं जलाता था कि कोई इसकी रोशनी से फायदा उठाएगा, बहुत ही जरूरत के वक्त आग जलाता था, लेकिन जैसे ही उसको लगता था ना कि कोई और भी रोशनी से फायदा उठा रहा है तो उसको बुझा देता था। यही जैसे मैंने आपको गाड़ी की मिसाल दी है, जैसे मैंने आपको पंखे के नीचे या एसी के अंदर बैठने की मिसाल दी है। अब वो पंखा या एसी को तो नहीं कुछ फर्क पड़ता, 10 लोग उसके नीचे बैठे या एक बैठे, लेकिन बस इसको क्यों हो रहा फायदा। इसी तरह एक और वाक्य आता है कि मरवान बिन अबी हफ्सा बड़ा बखील आदमी था, एक दिन वो खलीफा महदी अब्बास के पास आने लगा तो उसकी बीवी ने कहा अगर तुम्हें कुछ इनाम मिला तो मुझे क्या दोगे। कहने लगा अगर मुझे 1 लाख दिरहम मिले ना तो तुझे 1 दिरहम दे दूंगा। सोचें जरा कि इंसान का बुखल कितना है। इसी तरह एक बकील बड़ा दौलतमंद था, इससे ही पता चलता है ना कि ये इससे नहीं फर्क पड़ता कि किसी के पास दौलत कितनी है, या कोई गरीब है या कोई अमीर है या किसके पास कितनी नेमते हैं, ये दिल होता है जो तंग होता है या खुला होता है। अब ये देखें ये बखील इतना दौलतमंद था, एक दिन उसने बाजार से जरूरत की कुछ चीजें खरीदी और मजदूर को बुलाया और कहा इन चीजों को उठाने का क्या लोगे। उसने कहा 1 हिबा, चांदी का सिक्का था जो 2 जौ के वजन का था, बस इतना काम। तो कहने लगा कुछ काम करूं। ये जैसे हमारी आदतें होती हैं ना कि किसी से कोई चीज खरीदने लगेंगे, वो 2 डॉलर की भी चीज होगी ना, कहेंगे कुछ काम करूं, उसके अंदर वो क्या काम करे, लेकिन वो 5 से 2 की कर देगा तो हमें तसल्ली होगी, लेकिन अगर वो कहेगा ना 2 की है तो हम कहेंगे नहीं कुछ काम करो। तो मजदूर कहने लगा इससे मैं क्या काम करूं, ये तो सबसे छोटा सिक्का है। वकील ने कहा ऐसा करते हैं, कहा हम 1 हिब्बा की गाजरें लेते हैं फिर दोनों मिलके खा लेते हैं। यानी इतना बकील था। तो बुखल के भी दर्जे हैं, सखावत के भी दर्जे हैं। सखावत का सबसे आला दर्जा ईसार है, बुखल का दर्जा मैंने आपको बता दिया शोह है। तो ईसार क्या है कि अपनी जरूरत पे भी दूसरे को तरजीह दी जाए, और बुखल के जरूरत के बावजूद आदमी अपनी जात पे भी ना खर्च करे। ये इंतहा है बुखल की। तो इसार के हाल ये देखें, एक तो होता है ना सखावत के खर्च करना, एक होता है कि यानी मेरे पास जितना है उसको भी अपनी जरूरत पे नहीं दूसरे की जरूरत पे खर्च कर दिया जाए। तो सखावत में तो इंसान के पास है तो वो खर्च करता ही है, अपने ऊपर भी खर्च कर रहा है दूसरे पे भी, लेकिन कभी होता है ना इतना कम होता है कि इंसान या तो अपने ऊपर खर्च कर ले या दूसरे के ऊपर कर ले। तो ये बड़ा आला मकाम है। तो अल्लाह ताला ने कुराने पाक में अंसारे मदीना की तारीफ की बातें हैं, और आज हाल ये है कि हम एक मजदूर को हायर करते हैं ना, तो हमारा दिल करता है कि ये इतना कम पे काम करे, इतने कम पे काम करे कि मुफ्त ही बस कर दे, कुछ देना ना पड़े मुझे। हालांकि देखिए हमारे पास होता है, फिर भी हमारे अंदर बुखल है। कितना जमा कर लेंगे, कितना खा लेंगे, कितना पी लेंगे, कितना पहन लेंगे। तो कहा जाता है कि जब सखी मरता है तो जमीन और उसके निगरान फरिश्ते कहते हैं, रब इस बंदे को इसकी सखावत की वजह से माफ कर दे, और जब बकील मरता है तो कहते हैं, अल्लाह इस बंदे को जन्नत से रोक दे, जैसे कि इसने तेरे बंदों को दुनिया में उस चीज से रोका हुआ था जो तूने इसके हाथ में रख दी थी, यानी इसके पास नेमतें थी, इसने बंदों से रोकी हुई थी। अब एक आदमी कयामत के दिन आएगा जिसके पास कोई नेकी नहीं होगी, वो सोचेगा मेरा तो अब बिल्कुल बुरा हाल, अब मेरा क्या बनेगा। तो एक नेकी लाई जाएगी, वो क्या नेकी होगी कि वो दुनिया में लोगों को कर्ज दिया करता था, लेकिन जब देखता था कि कोई तंग दस्त है, कर्ज अदा नहीं कर सकता, तो अपने कारिंदों से कहता था कि इसको छोड़, अल्लाह ताला इस बात पे उसको बख्श देगा उसकी सखावत की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आते किसी मोमिन में इकट्ठी नहीं हो सकती, बुखल और बदखुल के। बुखल किसी मोमिन के अंदर नहीं हो सकता, यो इतना बखील हो, लोगों से रोक रोक के रखे, बस मेरे पास रहे। आज हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि मोमिन के अंदर ये चीज हो ही नहीं सकती, ना बदखुलकी हो सकती है, बुरा अखलाक नहीं हो सकता और बुखल नहीं हो सकता। हमारा तो बस ही नहीं चलता कि हम दूसरे को से इतना ले लें कि उसके कपड़े भी उतरवा लें। हालांकि जो खर्च करता है अल्लाह ताला उसको और अता करता है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, गिन गिन के ना दो, अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन के देगा फिर। और उसके लिए आपने दुआ फरमाई है जो नरमी करता है लेने में भी और देने में भी। तो हमें इतनी बुरी आदतें पड़ चुकी हैं ना कि हम बस चाहते हैं, इतनी हिर्स है हमारे अंदर, और फिर एक देखा देखी माशरे का भी ट्रेंड, और फिर एक तरीका ही हमारा बन चुका है कि जो चीज भी लेनी है ना बस कम हो जाए किसी तरह, मुझे देने ना पड़े उतने पैसे जितनी की वो चीज है, उससे कम में ही लूं तो मेरी कामयाबी है। और इसको अच्छा बड़ा शातिर और बड़ा अकलमंद समझा जाता है जो ऐसा करे। हातिम ताई मुसलमान भी नहीं था मगर सखी था, तो उसकी बेटी जब कैद होके आई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पे उसकी रायत फरमाई थी कि ये हातिम ताई की बेटी है। सखावत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हातिम ताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से भी पहले का था, तब भी देखें आज तक लोग उसको जानते हैं, हालांकि वो कोई नबी नहीं था, कोई वली नहीं था, बस सखी था। और बखीली अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, इसकी वजह से कई लोग जहन्नम में जाएंगे। तो इसलिए हम बुखल दिल का छोड़ दें, दिल को खुला करें, फराग करें, और इसके लिए कोशिश करें, माफ करने में भी दिल को बड़ा कर लें। अल्लाह ताला हमें दिल की तंगी से महफूज रखे। दिल इतने बड़े हो जाए किसी को दे दिया तो उसके बाद याद भी नहीं रहना चाहिए कि क्या दे दिया मैंने, और बाज लोग गिन गिन के रखते हैं, भाई कहीं भूल ही ना जाए कि मैंने किसी को कितना दिया है और किसी से कितना लिया है, वो भी गिन के रखते हैं, क्योंकि कल को देना है ना तो फिर उस मुताबिक दूंगी, उसको भी कॉपी में लिख लेते हैं। इतना बुखल, आपकी जितनी इस्तेआत है दे देना, जिसने आपको दिया उसने अपनी इस्तेआत के मुताबिक दे दी, हम इसमें भी गिन गिन के करते हैं, तोहफे भी वो कहीं ज्यादा ना चला जाए और कहीं कम भी ना रह जाए, या दूसरा ताना देगा, मैंने तो इतना दिया था इसने मुझे ये दिया। तो ये हेयर्स और बुखल ये कोई आके हमारे अंदर से नहीं खत्म कर सकता, हमें खुद इस पे वर्क करना। जहां पे दिल तंग होने लगे, देखिए जितनी भी हम ये बातें पढ़ रहे हैं ना, इनका इलाज इनके ऑपोजिट में है। जहां पे दिल करने लगे कि नहीं मैंने नहीं करना, वहीं पे और ज्यादा दे। जहां पे आपको पता है कि किसी का हक बनता है, कोई इतनी की चीज दे रहा है, इतने की है, आपने नहीं लेनी ना ले, लेकिन उसको ऐसे ना जिज करें कि बिल्कुल उसको जो 10 की चीज है वो 1 में ही दे दे तो अच्छा। और फिर लोगों को बताएं, दिखा मैंने इतने की चीज ना इतने में ली है, मैंने मेरा कितना बड़ा कमाल है। ठीक है, मारूफ होनी चाहिए कीमत, यानी जो एक जमाने के लिहाज से, उस लिहाज से ठीक होनी चाहिए, मगर ऐसी ना चीज हो हमारे अंदर कि इतनी हेयर्स के जब मैं देने लगूं, जब मैं बेचने लगूं तो 10 का भी मुझे 20 ही मिल जाए, लेकिन जब खरीदने लगूं तो 10 का कोई 1 में ही दे दे। तो ये हमारे माशरे में आज इतनी आम हो चुकी है ना ये चीजें, इससे हमने निकलना है। ना ये सोचना कि मैं दूंगी ना तो अल्लाह ताला भी मुझे अता करेगा, मुझे भी तो किसी ने दिया है ना, अगर वो भी इसी तरह मुझे देता तो फिर मेरे पास क्या होता, वो भी ऐसे ही गिन गिन के देता, तूने कितनी नमाजें पढ़ी हैं उसके मुताबिक तुझे दूंगा, और कितने रोजे रखे हैं उसके मुताबिक तुझे दूंगा, तो फिर मेरा क्या हाल होता। तो कोई बात नहीं, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया है कि बढ़ता हुआ दे दो, कम ना करो, ये सिखाया। ये ज्यादा चले जाए किसी के पास वो बेहतर है, कम ना करो, लेकिन ये तभी होगा ना जब हमारी दिल की तंगी दूर होगी। अगर दिल इतना तंग है तो फिर तो बाद में नींद भी नहीं आनी कि हाय उसको इतना दे दिया मैंने, ये मैंने क्या कर दिया। तो ये बड़े लोगों के काम होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सखी थे, ऐसा नहीं था कि आपके पास बहुत माल था, जायदाद थी, मगर मैंने आपको बताया ना दिल की सखावत का इससे नहीं ताल्लुक होता। बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बखील होते हैं, बड़े फकीर बेचारे, वो किसी को दे रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं, आगे अपना भी किसी को दे देते हैं। तो अल्लाह ने अगर हमें दिया है तो हमारे दिलों में बुखल नहीं होना चाहिए, ये किसी को देने से खत्म नहीं होता। याद रखें, कभी किसी के ऊपर स्पेंड करने से आपका नहीं खत्म होगा, क्योंकि ये उसका रिस्क है जो अल्लाह ने आपके रिस्क में शामिल कर दिया। तो बाज दफा हम सदका तो कर लेते हैं कि हाँ चलो भाई इसका इतना आ जाए, लेकिन वैसे आम मामलात में इतने बखील होते हैं कि बस दांतों से दबा के अपने माल को रखा होता है, ये खर्च नहीं करना। और आप देखेंगे कि वो लोग जो खर्च करते हैं उनकी जिंदगी में कितनी बरकतें होती हैं, और बखील का फिर भी कुछ नहीं बनता। अल्लाह ताला हमें दिल की शोह से बचाए, हमारे दिलों को बड़ा कर दे। इसी तो, अब माफ करना भी इसी के अंदर आता है, हम माफ कर दें दूसरे को, इतने हमें दिल अल्लाह ताला बड़े दे दे कि दूसरों की बातें पी के और उसके बाद कहें कि कोई नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नबी अलैहिस्सलाम को देखे ना, दिल बड़ा था तो माफ कर दिया, यानी कि उसके बाद उनको ताने ही देते रहे, और उसके बाद नहीं मेरा नहीं दिल करता, तुमने तो ऐसा किया जैसा किया, कहाँ कहीं उनकी जिंदगी में ऐसा मिलता है, हम उनकी उम्मत हैं। छोड़े इन चीजों को, दिल की तंगी को छोड़ दे, हकूक देने में भी, अच्छा उसने मुझे कितना दिया तो मैं उसके मुताबिक उसका हक दूंगी, हाँ वो तो मेरे साथ ऐसे करता है, मैं क्यों उसके साथ ये करूं। तो दिल तंग है इसका मतलब, बेपरवाह हो जाए। अल्लाह गनी है, देखें अल्लाह ताला भी गनी है, बेनियाज, वो देता है, उसको ये परवाह नहीं, ये तो मुझे मानता ही नहीं, मैं क्यों उसको दूं, ये तो मेरे साथ दूसरे शरीक करता है, मैं क्यों उसको दूं। वो गनी है, वो देता है और आज तक दे रहा है और देता रहेगा, जब से दुनिया शुरू हुई तब से खर्च कर रहा है और उसका काम नहीं होता। तो इन आदात को अपनाना है, ये अच्छी आदतें हैं, और गंदी आदतों को निकालना है, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए इसमें। आज का जो जिक्र है वो इसलिए इतना जरूरी जिक्र है कि ये जब आपके पास ज्यादा हिम्मत ना हो, थके हुए हो कुछ है, तो तब ये बहुत ही कारामत है। इसके बारे में हदीस आती है, हज़रत जुवेरिया रज़ील्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि सुबह की नमाज पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से बाहर तशरीफ ले गए, और मैं अपनी नमाज पढ़ने की जगह पर बैठी रही, फिर आप दिन चढ़े वापस आए, यानी जब सूरज बुलंद हो गया था और मैं अभी तक बैठी हुई थी, तो आपने फरमाया जिस हालत में मैंने तुम्हें सुबह छोड़ा था क्या तुम उस वक्त से अभी तक यहीं बैठी हुई हो। मैंने अर्ज किया जी हाँ। आपने फरमाया अगर मेरे जाने के बाद तुम चार कलिमात 3 दफा कह देती तो तुमने शुरू दिन से जो अब तक पढ़ा है ना, अगर उनके साथ इन कलिमात का वजन किया जाए तो इनका वजन ज्यादा है। तो वो कलिमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाए, और वो क्या कलिमात थे, हम भी सुबह हो तो ये कलिमात कह दिया करें। तो ये यानी आप बहुत देर बैठ के जिक्र करते रहें तो आपने उनकी जगह ये 3 कलिमात 3 दफा ये कलिमात कह दिए ना, तो इनका वजन ज्यादा होगा। क्या है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की मैं पाकी बयान करती हूँ उसकी तारीफ के साथ। आदादा खौलते ही, कितनी करती हूँ, इतनी जितनी उसकी मखलूक की तादाद है, उसकी मखलूक की गिनती है। अल्लाह उसकी मखलूक को कौन गिन सकता है, हमें तो आज पता भी नहीं है कि उसकी अल्लाह ताला की मखलूक है कितनी, यही नहीं हम जानते। वह रिदा नफसी ही, और उसकी रजा के मुताबिक जितनी से वो राजी हो जाए। वह जीनत आरश ही, और उसके आरश के वजन के बराबर। अल्लाह अकबर, उसके आरश का वजन क्या होगा, तो हमारी तो अक्ल भी नहीं वहां तक पहुंच सकती। वह मीदाद कलीमाती ही, और उसके कलिमात की तादाद के बराबर। मैं अल्लाह ताला की पाकी बयान करती हूँ और उसकी हम्द बयान करती हूँ, तो बहुत ही कारामत दुआ है। और वो लोग जो कि बूढ़े हो जाते हैं, ज्यादा नहीं बहुत पढ़ सकते, बीमार हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है कि ज्यादा जाहिर है उनके लिए जिक्र करना बैठना मुश्किल होता है, तो वो ये पढ़ लिया करें, और बाकी हम सब के लिए भी इंशाल्लाह। आज की जो दुआ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा किया करते थे, कसरत से ये दुआ मांगा करते थे। तो क्यों मांगते थे इसको मैं आपको कल बताऊंगी इंशाल्लाह, अब वक्त नहीं है इतना। तो लेकिन आप दुआ आज सुन लीजिए, दुआ क्या है, या मुकल्लिबल कुलूब, ए दिलों को फेरने वाले, सब्बित कल्बी आला दीन का, मेरे दिल को अपने दीन पे साबित रखना। कि दिल फिर जाते हैं, दिल कभी ऐसा होता है कभी किसी तरह का होता है। बताए आपको, देखें ये दिल की तो हालत ये है कि इस रमजान में हमारा दिल कुछ है, अगले में क्या हो वो हमें नहीं पता। अगले साल अगर हम जिंदा रहते हैं तो ये नहीं पता कि दिल की हालत बेहतर होगी या इससे कम होगी, पीछे जा चुके होंगे अल्लाह माफ करे हमें, या आगे बढ़े होंगे, अल्लाह आगे बढ़ने वालों में करे। अगर दिल ऐसे ही है, आज की अपनी हालत पे डिपेंड ना किया करो कि आज की मेरी हालत ऐसी है तो ऐसी ही रहनी, कोई पता नहीं है। इसी तरह या मुसर्रिफ अल कुलूब, ए दिलों को फेरने वाले, सर्रिफ कल्बी आला तौअतिका, मेरे दिल को अपनी इताद पे फेर दे, यानी अपनी इताद पे मेरे दिल को ले जा। तो ये दिल ही है जिसके ये सारे मामलात हैं, और ये हम पढ़ भी जो रहे हैं तो ये सारे दिल की चीजें हैं। तो दिल अगर अल्लाह ताला की इताअत पे कायम हो जाए, दिल अगर दीन पे जम जाए, तो इंसान के लिए कामयाबी है। अल्लाह ताला हमारे दिल को ऐसा बना दे कि वो साबित हो उस अल्लाह के दीन पर और उसकी इताअत पर, और हिले नहीं इधर उधर। आज नमाज को अपनी बेहतर बनाने के लिए, अच्छा ये दुआ आप नमाज में सलाम फेरने से पहले भी मांग सकते हैं, ठीक है। ये सारी दुआएं जितनी आप सीख रहे हैं, तो खास तौर पे जब आप फर्ज नमाज पढ़ें तो सलाम फेरने से पहले जितनी आप दुआएं मांग सकते हैं उतनी दुआएं मांगें, ये आपकी नमाज को और चार चांद लगा देगी। आप देखिए हमने एक बचपन से एक दो दुआएं सीखी हुई हैं, बस उन्हीं को मांगते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी दुआएं मांगा करते थे सलाम फेरने से पहले, वो दुआएं भी आप सीख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जितनी ये हम दुआएं पढ़ रहे हैं ना, आप इनमें जो भी दुआएं आपको जुबानी आती हैं नहीं तो याद कर लीजिए, और इनको सलाम फेरने से पहले किया करें। आप देखें ये कितनी ज़रूरी दुआ है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगी कि इस दुआ को करना कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर हमारा चारा नहीं है। तो ईमान ना रहा, दीन ना रहा, तो कुछ भी नहीं। लिहाजा इस दुआ को, छोटी सी दुआ है, इसको याद कर लें और सलाम फेरने से पहले किया करें, और कसरत से दुआएं करें। सलाम फेरने से पहले जितनी आप दुआएं मांग सकते हैं उतनी मांगिए, यानी होनी तो अरबिक में चाहिए। जितनी मसनून दुआएं हैं, कुरानी दुआएं हैं, जितनी आपको याद है वो मांगा कीजिए, वो उस वक्त कबूलियत का वक्त होता है। अल्लाह ताला हमें अपने दीन पे साबित कदमी अता फरमाए और अपनी इताअत गुजार बंदियों में शामिल फरमा ले। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।